विराज हर हाल में आशिका को एजेंसी में काम करने के लिए रखना चाहता था। आशिका भी अपनी जिद पर अड़ी थी। वो किसी भी हाल में अपना काम खत्म करने के बाद एजेंसी में नहीं रुकने वाली थी। उसे हर हाल में अभिमान के पास जाना था। आशिका को काम के बहाने ही रोका जा सकता था और एक रात में उसके लायक काम तैयार करना किसी के बस में नहीं था, सिवाय एक शख्स के, विराज का छोटा भाई रेहान, जो आशिका के साथ काम करता था। विराज ने रेहान को ब्लैकमेल किया और उसे इस बात पर मजबूर किया कि वो आशिका के लिए टेक्निकल वर्क निकाले। अगली सुबह जब आशिका विराज के कहने पर उसके केबिन में पहुंची, तब वहां और ऑफिसर और रेहान भी मौजूद था। विराज इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि रेहान उसका काम कर दिया है। क्या तुम आगे के कामों के लिए तैयार हो? विराज ने कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ पूछा। एब्सोल्युटली यस, लेकिन हाँ, वो काम मेरे लायक भी होना चाहिए कैप्टन विराज, वरना मुझे ये लगेगा कि आपकी एजेंसी में छोटे मोटे एरर सही करने के लिए भी टेक इंजीनियर मौजूद नहीं है, आशिका ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया। विराज ने उसकी बात पर सिर हिलाया। रेहान ने सुबह ही उसे फाइल सौंपती थी और उसे देखने के बाद विराज श्योर था कि मजबूरी में ही सही, अब आशिका को वहां रुकना होगा। विराज ने फाइल को इंसर्ट किया और आशिका को समझाना शुरू किया। जैसा कि तुम देख सकती हो, एजेंसी के प्राइवेट सिक्योरिटी डेटा पर काफी बार अटैक हुआ है। मुझे इसकी सिक्योरिटी टाइट चाहिए और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि एजेंसी सिक्योरिटी को भी और टाइट कर दिया जाए। और आपको लगता है कि ये छोटा काम मेरे लिए है? आशिका ने सिर हिलाकर कहा। तो अब तुम्हें ये सब छोटा काम लग रहा है? विराज हल्के गुस्से में बोला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेरा मैनेजर भी संभाल सकता है, आशिका ने जवाब दिया और रेहान की तरफ देखा। उसका इशारा समझते हुए रेहान तुरंत आशिका के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो आशिका की बात पर सहमति जताते हुए बोला, ऐश बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ और आप चाहो तो मैं एजेंसी भी ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ, कई बार क्रिटिकल सिचुएशन आएगी जो मुझे भी हैंडल नहीं होगी, तो हम ऐश को बुला सकते हैं। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि मैं ऐश का अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता हूँ। रेहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। विराज ने उसे घूरते हुए देखा और दांत पीसकर कहा, तुमने ये जानबूझकर किया ना? और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसमें रेहान का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? आशिका ने तुरंत पूछा। ये तो तुम्हें अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए, विराज ने जवाब दिया। वो अभी भी इनडायरेक्ट रेहान को धमकाने की कोशिश कर रहा था। कभी मौका मिला तो जरूर पूछूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे एलए के लिए निकलना है। टिकट्स मैंने पहले ही बुक कर ली हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे लायक यहाँ अब कुछ बचा है, और जो भी काम है वो रेहान देख लेगा, आशिका ने शांत लहजे में कहा। विराज के पास अब उसे रोकने की कोई वजह नहीं बची थी। आशिका जाने के लिए दूसरी तरफ पलटी तो वहीं विराज ने गुस्से से रेहान की तरफ देखा। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है। मैंने तुम्हें कहा था कि काम ऐसा होना चाहिए जिसे ऐश कर सकती है, तुमने जानबूझकर ऐसी फाइल तैयार की जिसे उसके बजाय तुम भी कर सकते हो, विराज ने दबी आवाज में कहा। आपने मुझे कम समझा है क्या? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और आज तो आपको इसका अंदाजा भी हो गया होगा, रेहान ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। रात को जब विराज रेहान को ब्लैकमेल करके उसका काम करने के लिए कह रहा था, तब रेहान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। साथ ही वो आशिका को चीट नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि बहुत मुश्किल से आशिका की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया था जिसकी वजह से सच में उसने जीना सीखा था। अगर अभिमान और आशिका की शादी नहीं हुई होती तो आशिका को वो आसानी से वहां रोक सकता था और उसे भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बाहर की दुनिया से ज्यादा सुरक्षित वो उस एजेंसी में थी। रेहान ने बीच का रास्ता निकाला जिससे विराज का काम भी हो जाए और आशिका को भी नुकसान ना हो। अभी भी वो यहीं है, और ये मत सोचना कि उसे तुम्हारी सच्चाई पता नहीं होगी। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा सच जानने के बाद तुम्हारी ये दोस्ती और घमंड कितना टिकता है, विराज ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। वो और रेहान धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि तभी आशिका रुकी और विराज की तरफ देखकर हल्के लहजे में बोली, वैसे आपने पहले बताया क्यों नहीं कैप्टन विराज कि आप रेहान के बड़े भाई हैं? रेहान को हमेशा मैंने अपने दोस्त और एक भाई की तरह ट्रीट किया है, इस हिसाब से आप भी मेरे एल्डर ब्रदर हुए। अगर पहले इस रिश्ते का खुलासा हो जाता तो मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी और भी बढ़ जाती, विराज ने हैरानी से रेहान की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया था। कल रात ही रेहान ने आशिका को सब कुछ बता दिया था। विराज नहीं जानता था कि आशिका को रोकने के लिए उसने जो जबरदस्ती की फाइल क्रिएट करवाई थी वो खुद आशिका ने बनाई थी। मिलते हैं रेहान, खुद का ध्यान रखना, यहाँ रहकर बात कर पाना मुश्किल होगा, पर जब भी बाहर निकलने का मौका मिले जरूर बात करना, आशिका ने रेहान की तरफ देखकर कहा। रेहान जल्दी से आगे बढ़ा और उसने आशिका को गले लगा लिया था। वो उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, आई होप कि तुम इस बात से नाराज नहीं हो कि मैंने तुमसे विराज की सच्चाई छुपाई, मेरी वजह से तुम उनकी नजरों में आ गई, कहीं ना कहीं मुझे इसका फायदा ही हुआ है, सो डोंट वरी, हो सके तो यहाँ ज्यादा मत रुकना क्योंकि ये जगह हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी हुई है, आशिका ने उसे समझाया और उससे अलग हो गई थी। रेहान से मिलकर आशिका अपना लगेज लेने के लिए कमरे में पहुंची। गर्व पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि आशिका का काम पूरा हो गया है तो अब वो वहां नहीं रुकने वाली है। मैं तुम्हें मिस करूंगा, गर्व ने आशिका को देखकर गहरी सांस लेकर कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी फीकी मुस्कुराहट थी। जब तुम मुझे ज्यादा मिस करोगे तब यहाँ कोई ना कोई काम निकल ही आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, आशिका ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ मैं तुम्हें चाहकर भी ना ढूंढ पाऊँ। अब अगर तुम यहाँ वापस आई तो मुझे नहीं लगता कि इस बार विराज तुम्हें जाने देगा, गर्व ने गंभीर आवाज में कहा। उसका मूड इसी वजह से खराब था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि वो आशिका को दोबारा नहीं देख पाएगा। आशिका भी उसके कहने का मतलब बखूबी समझ रही थी, पर दूसरा सच ये भी था कि गर्व की नजरों से वो आज तक नहीं बच पाई थी। यहाँ तक कि गर्व ने उसे तब भी सपोर्ट कर लिया था जब वो आकाश के साथ उसकी प्राइवेट जेट में थी। और फिर भी तुमने मुझे ढूंढ लिया तो, अचानक आशिका के मुंह से निकला, तो शायद मैं तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दूं, गर्व ने नम आंखों से कहा। उसने आशिका को हक करने का इशारा किया। आशिका ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था। कभी कभी आशिका को लगता था कि वो इतनी भी अकेली नहीं है, भले ही उसके अपनों ने कभी उसे नहीं अपनाया था, पर हाँ, रेहान, गर्व और कभी अभिमान, उसने कभी उसे अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। तो कौन है वो जिसके पीछे जाने के लिए इतना पागल हुए जा रही हो, गर्व ने धीमी आवाज में पूछा। इस बार जब तुम मुझे ढूंढ लोगे तब जरूर मिलवाऊंगी, आशिका ने जवाब दिया। अगर वो कैप्टन विराज जैसा हुआ तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, गर्व बोला। डोंट वरी, वो कैप्टन विराज की तरह नहीं बल्कि कैप्टन गर्व की तरह है, जो खुद को खतरे में डालकर भी मुझे प्रोटेक्ट करता है, आशिका ने मुस्कुराकर कहा। गर्व से थोड़ी देर बात करने के बाद आशिका अपने जरूरी सामान को लेकर गर्व के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गई थी। विराज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आशिका एजेंसी से सुरक्षित बाहर निकल गई थी। अगर गर्व और रेहान ने उसका साथ नहीं दिया होता तो अकेले उसके लिए ये करना मुश्किल होता।
आशिका को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद गर्व वहां से चला गया था। आशिका एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठकर अनाउंसमेंट होने का इंतजार कर रही थी। उसकी फ्लाइट थोड़ा लेट थी। अचानक आशिका को वो पल याद आ गया जब वो एलए से अभिमान से मिलने पहली बार इंडिया जा रही थी। तब भी उसके लिए खतरा कम नहीं था, आकाश उसके पीछे पड़ा हुआ था। मेरा बस चलता तो सीधा यहाँ से तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन पहले मुझे एलए जाना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि कैप्टन विराज की मुझ पर नज़र है। अगर उसे गलती से भी अभिमान के बारे में पता चला तो वो उसका नाम लेकर मुझे ज़रूर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, आशिका ने खुद से बड़बड़ा कर कहा। और इसी के साथ फ्लाइट टेक ऑफ होने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। आशिका को काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक लंबी कैद के बाद आज़ाद और खुली हवा में सांस ले पा रही है। बस उसे अब थोड़ा इंतज़ार करके अभिमान के पास पहुंचना था। वहीं आशी की सच्चाई सामने आने के बाद अभिमान उस पर नज़र रखना चाहता था, इसलिए उसने मिस्टर सिंघानिया को खुद को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहा। अभिमान की बात मानते हुए सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जब आशुतोष, काजल और आशी साथ में बैठे हुए थे तब आशुतोष ने इस बारे में बात करने का सोचा। मेरी और अभिमान की डील लगभग फाइनल ही होने वाली है, मैंने सोचा है कि क्यों ना आज रात हम उसे डिनर के लिए बुलाएं, आशुतोष ने काजल की तरफ देखकर पूछा। काजल ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है, चाहे तो पूरी राजवंश फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे ही हैं। नहीं, सिर्फ अभिमान को ही इनवाइट करते हैं, आशुतोष ने तुरंत बाकी फैमिली को बुलाने से मना कर दिया था। आशी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और वो अभिमान के अचानक डिनर पर बुलाए जाने का कारण भी अच्छे से समझ रही थी। जब से उन्हें आशिका की सच्चाई का पता चला था तब से उनका रवैया पूरी तरह बदल गया था, खासकर अभिमान के प्रति। पहले जब सबको ये लगता था कि आशी और अभिमान की शादी हुई है तब भी आशुतोष अभिमान को अपने घर आने नहीं देना चाहते थे। आशी के बहुत कहने पर वो इस शादी के लिए तैयार हुए थे, लेकिन आशिका के जिंदा होने की खबर भर से उनकी अभिमान के प्रति सारी नाराजगी दूर हो गई थी। आशी की मुट्ठियां बिंछी हुई थीं और वो जलती हुई निगाहों से उन दोनों को देख रही थीं। आशी ने मन ही मन कहा, आप इतने डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं मॉम डैड, तब भी सबकी नज़रों में अभिमान इसी घर का दामाद था, लेकिन ना तो आप हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते थे और ना ही आपने कभी उसे डिनर पर इनवाइट किया। अब जब आपको पता चला कि वो आपकी असली बेटी का पति है तो उसे बेवजह डिनर पर बुलाया जा रहा है। आशी के गुस्से में भूख तक मर गई थी, वो उठकर न हंसे जाने लगी। तभी आशुतोष ने सख्त आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो, अपना खाना तो खत्म करो। मेरा हो गया है और मैं आज का डिनर पर नहीं आ पाऊंगी, मानसी ने पजामा पार्टी रखी है, मैं वही जाने वाली हूँ, आशी बोली। अभिमान खास उनके घर पर आशी के लिए ही आ रहा था और आशी इस डिनर में नहीं रहना चाहती थी। आशुतोष को ये काफी अजीब लगा क्योंकि आशी अब तक अभिमान के पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। यक यहाँ नहीं है, अगर घर पर कोई गेस्ट आ रहा है तो सबका होना जरूरी है, पजामा पार्टी किसी और दिन रख लेना, आशुतोष ने आशी को जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन डैड, आज से पहले तो आपने मुझे कभी इस तरह घर पर रुकने के लिए फोर्स नहीं किया और ना ही किसी चीज़ के लिए रोका है, आशी तुरंत बोली। उसका मन किया कि वो चिल्लाकर उन दोनों को कह दे कि वो उसके लिए इतना बदल क्यों गए हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें उनकी बेटी के जिंदा होने की सच्चाई पता चल गई है। आशु, वो नहीं रुकना चाहती है तो क्यों फोर्स कर रहे हो, काजल ने आशुतोष को समझाने की कोशिश की ताकि उन दोनों के बीच किसी तरह की बहस ना हो जाए।
मैंने कहा ना उसका होना जरूरी है, वो इस फैमिली का हिस्सा है और पार्टी किसी और दिन भी हो सकती है, आशुतोष ने सख्ती से कहा। उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि आशी के पास इनकार करने का रास्ता नहीं है। उनकी बात पर हाँ कहकर आशी वहां से चली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आशिका शाम के 4 के करीब एले पहुंच चुकी थी। टाइम डिफरेंस होने की वजह से वो सही समय पर घर पहुंच चुकी थी। पूरे दिन अपने लिए कुछ जरूरी शॉपिंग और काम निपटाने के बाद रात के 10 बजे के करीब आशिका अपने घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में रोशनी थी। वेलकम माई लव, सामने से स्काई की आवाज आई, जो एक कुर्सी पर पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। आशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो वापस जाने के लिए पलटना चाहती थी, लेकिन स्काई वहां अपने आदमियों के साथ मौजूद था। एक कहावत सुनी होगी, आसमान से पटके और खजूर में अटके, मतलब एक मुसीबत से बाहर निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, और यही आशिका के साथ हुआ है। देखते हैं कि वो अभिमान तक कैसे पहुंच पाती है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।